ശ്രീമന്നാരായണ നാരായണ സ്യാവര രാമചന്ദ്ര കീ ജയ. ഹം ലോഗോ കോ യേ സമജ്ഞാ ചെയ്യേ കി മൃത്യു കാ കോയി ഭരോസ നഹീ ഹൈ, യാനി കിസ് സമയ കേ ബീച് മേ കാലക പ്രാപ്ത ഹോ ജാവേ. हमारा जो वर्तमान के बीच के यहाँ जितना साधन बाकी है वो बाकी ही रह जाएगा यदि हम सावधान नहीं हुए हैं. इसलिए मृत्यु के प्राप्त होने के पहले पहले ही जिस काम के लिए हमारे को मनुष्य का शरीर मिला है उस काम को बना लेना चाहिए, जो कि आगे जाकर के हमारे को घोर पश्चाताप करना नहीं पड़े. मनुष्य शरीर के बदल जाने पर कोई भी दुनिया में ऐसा शरीर नहीं है, ऐसी योनि नहीं है कि जिसमें परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार हुए. जब ऐसी बात है तो हम अपने अधिकार को पाकर के उसे को क्यों मिट्टी में मिलावें. परमात्मा की प्राप्ति के साधन के अलावा कोई भी काम के वहाँ एक क्षण भी बिताना है वो अपने समय को मट्टी में मिलाना है. और परमात्मा की प्राप्ति के बीच के वहाँ समझो थोड़ी भी कमी रह जाएगी तो फिर हमारे को जन्म लेना पड़ेगा, और वो जन्म कहाँ होगा इसका कोई पता नहीं है. इसलिए जब तक देह में प्राण है तब तक अपने को सब काम छोड़ करके इस काम को बनाना चाहिए जिस काम के लिए हम लोग आए हैं. हमारा जो काम है वो हमको ही करना है. जो काम दूसरों के द्वारा हो सके उस काम को अपने करने की आवश्यकता नहीं है, और जो काम हमारा हमारे बिना हो नहीं सके हमारे खास से हो सकता है उस काम को पहले नंबर करना चाहिए. जो काम एक प्रकार से हमारे उत्तराधिकारियों के द्वारा हो सके उस काम को करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है. हमको तो वही काम करना है कि जो हमारे को ही करना है, तो हमारे को वही काम करना है कि जिस काम के लिए हम आए हैं, और हम आए हैं कुछ परमात्मा की प्राप्ति के लिए. तो परमात्मा की प्राप्ति के माँ जो बाधा पड़े तो एक प्रकार से उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए. स्त्री हो, पुत्र हो, बंधु हो, बांधव हो, कोई भी हो, एक प्रकार से उसको समझा देना चाहिए, विनय भाव से समझा देना चाहिए. विशेषकर तो अपना जो मन है यही अपने बाधक होता है, अपने मन को समझाने की विशेष आवश्यकता है. इस विषय के वहां कहीं कहीं हमारी बुद्धि जो है वो भी एक प्रकार से गलती के रास्ते पर चली जाती है. तो मन और बुद्धि यही हमारे शरीर के माँ प्रधान है. इन दोनों को हम समझाकर अपने कब्जे में कर ले हुए तो फिर दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जिसको हम नहीं कर सकते हैं. यही बात गीता में बताई कि एवं बुद्धे परंग बुद्धवा समस्त ध्यात्वान महात्मना जय शत्रु महाबाहु काम रूपंग दुरासनम. आत्मा जो है सो बुद्धि से भी बलवान है, श्रेष्ठ है और सूक्ष्म है और पर है, ऐसा समझ करके के और बुद्धि के द्वारा मन को अपने बस में करके के और इसे काम को मार डालना चाहिए. काम माने एक प्रकार से समझो कि विषयों में आसक्ति से उत्पन्न होना संगासंग जाते काम है. आसक्ति से जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो रजोगुण का ही स्वरूप है, ऐसा जो ये काम है यही सब अनर्थों का मूल है. इसी से थी समझो कि क्रोध लोभ इत्यादि को मोह ये सब उत्पन्न होते हैं. ये बात समझ करके के और एकदम निष्काम हो जाना चाहिए. हमारे द्वारा होने वाली सारी चेष्टा यानी उत्तम चेष्टा यज्ञदान तप आदि की चेष्टा अर्थात ईश्वर की भक्ति, ये सभी एक प्रकार से थी हमारी क्रिया निष्काम होनी चाहिए. भगवत अर्थ या भगवत अर्पण जो क्रिया है वो तो निष्काम है ही, उसके अलावा भी हमारी कोई क्रिया जो है समझो कोई स्वार्थ को लेकर के कामना को लेकर के नहीं होनी चाहिए। स्वार्थ और कामना को लेकर होने वाली चेष्टा वही बांधने वाली है। तो हम लोगों को गंभीरता पूर्वक इस विषय को हल करना चाहिए। हम लोगों का समय समझो कि इसी प्रकार से तालम टोल में चला जाता है, किसी के मुलाजे में चला जाता है, किसी की अपने खुशामद में चला जाता है। तो हमको ये विचार करना चाहिए कि हमको क्या जरूरत है। हमको तो प्रथम वही काम बढ़ाना है कि जिसके लिए हम आए हैं, और एक परमात्मा को छोड़कर के दुनिया में कोई भी हमारा नहीं है, यह बात हृदय के मार रख करके ऊपर से सबसे सभ्यता को व्यवहार रखें, और भीतर के बीच के वहाँ परमात्मा ही हमारे परम प्रेमी परम सुहृद और हमारे परम हितेशी हैं, ऐसा समझ करके के भगवान की शरण होकर के अपने को अपना कर्तव्य कार्य आरंभ कर देना चाहिए। भगवान के आश्रय पर रहकर भगवान पर निर्भर होकर के काम करने से काम की सिद्धि हो जाती है, काम की सफलता शीघ्र हो जाती है। संसार में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसको मनुष्य नहीं कर सके, और फिर भगवान का आश्रय लिया जाए तब तो फिर बात ही क्या है। भगवान यदि शरण मांगने पर शरण नहीं देते तो कठिनाई थी। उनके तो ये कानून है कि कोई भी उसकी शरण जाता है वहाँ ना नहीं है। वचन मात्र से भी कह देता है कि मैं आपका हूँ या मैं आपकी शरण हूँ, तो भगवान आदर से उसको लेते हैं, ना नहीं करते, चाहे वो कैसा ही पापी क्यों नहीं हो। इस बात को ख्याल मर करके हम लोगों को कितना बड़ा उत्साह होना चाहिए, और कभी अपने निराश तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब भगवान इस माप की कानून बनी हुई है तो हम क्यों ऐसे निराश हों। हमारे को करना ही क्या है, जो जीवन बाकी है उस बाकी के जीवन के बीच में उससे उच्च कोटि का साधन करना चाहिए, और उससे उच्च कोटि का साधन यही है कि भगवान के नाम और रूप को याद रखना और उसकी पुष्टि के लिए सत्संग और स्वाध्याय करना। इसके सिवा और हमको करना ही क्या है। शरीर से जो कुछ कार्य हुए वो भगवान की सेवा के रूप में होना चाहिए, और भगवान सबके माँ व्यापक है, इसलिए किसी की भी सेवा है तो भगवान की सेवा है। तो अपना दायरा जो है तो व्यापक है, फैला हुआ है, तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। और परमात्मा की प्राप्ति इस जन्म के थोड़े से समय में ही हो सकती है, किंतु वो थोड़ा भी समय यदि हाथ में न हुए तो मुश्किल है। तो इसलिए ये तेजी से साधन करने के लिए कहा जाता है। चलते उठते बैठते खाते पीते सोते कभी एक प्रकार से भगवान को नहीं भूलना चाहिए। भगवान हमारे चारों तरफ एक विराजमान हो रहे हैं, ये नहीं कि भगवान को कहीं से बुलाना है या लाना है, वे तो मौजूद ही हैं। केवल हमारी दृष्टि भगवान के सन्मुख होनी चाहिए। हम लोगों की जो दृष्टि हो रही है माया के सन्मुख, हम अपने सन्मुख देखते हैं संसार को, माया का जो कार्य जो संसार है इसको हम आंखों के सामने देखते हैं, और इंद्रियों के सामने देखते हैं, और बुद्धि और मन के सामने संसार को देखते हैं, किंतु देखना चाहिए भगवान को। भगवान कहते हैं कि योमांग पश्यति सर्वत्र और सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सत्यमेन प्रणश्यति। जो सब जगह मुझको देखता है और ये सारा ब्रह्मांड मेरे संकल्प के आधार देखता है, तो मैं उसके कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे कभी अदृश्य नहीं होता। मानो सदा सर्वदा जो मुझ परमात्मा को वो देखता रहता है, मैं उसको देखता रहता हूँ, जब उसकी मेरी दृष्टि के ओझल नहीं होता, जो मुझको अपनी दृष्टि के ओझल नहीं करता, मैं भी उसको अपनी दृष्टि से ओझल नहीं करता, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान कहते हैं कि ये मेरी प्रतिज्ञा है कि ये यथा मान प्रबंधे तांस्ते भजा में हम, जो जिस प्रकार से मुझको भजते हैं उन पुरुषों को मैं भी उसी प्रकार से भजता हूँ। हम भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान हमारा ध्यान करते हैं, हम अपना सर्वस्व भगवान के समर्पण कर दें तो भगवान अपना सर्वस्व अपने समर्पण कर देते। तो ऐसा संसार के बीच के वहां कोई दयालु नहीं है, ऐसा कोई उदारचित नहीं है, ऐसा कोई भी सुहृद नहीं है, भगवान के समान कोई भी अपना मित्र नहीं है। ये सब बातों को ध्यान में रख करके लाख काम छोड़ करके हमको भगवान से ही तो दोस्ती करनी चाहिए, भगवान की शरण होना चाहिए, भगवान के ही अपने निकट रह करके अपना समय बिताना चाहिए। अपने को समझो भगवान सब जगह है और हम भगवान के निकट ही रहते हैं तो फिर भगवान के निकट ही हैं। निकट रहने का ये मतलब नहीं कि कहीं जाकर के भगवान के पास रहना है, भगवान तो सब जगह है, ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहाँ भगवान न हो। तो बड़ी सुगमता है, ये तो केवल समझने की चीज है, मांगने की चीज है। हम इस बात को अपने दिल के मां अच्छी तरह समझ लेवे कि भगवान सब जगह है, इस बात को हम अपने मन में मान लेवे कि हमारा प्रभु सब जगह के बीच के मां मौजूद है, वो सदा है। ये नहीं कि सब जगह तो है किंतु कभी छोड़ के चला भी जाता है, वो तो सदा ही है, तो सब देश में है, सब काल में है, सब के मां व्यापक होकर के स्थित है। इसलिए एक प्रकार से उसे का नित्य संयोग है। हम नहीं माने वो हमारी गलती है, नहीं मानने का यह नतीजा है कि जो हम 84 लाख योनियों में भटकते फिरते हैं, ये नहीं मानने की जो ईंट है ये एक प्रकार से हमारे अधर पतन में हेतु है। इसलिए एक प्रकार से इसके मान लेने के बीच के में हमारा सब प्रकार से कल्याण है, मांगने में हमारा गौरव है, और न मांगने के बीच के में पूरा मूर्खता और कुछ नहीं है। एक एक जो क्षण है उसका मूल्य भगवान की प्राप्ति है, एक क्षण का मूल्य भगवान की प्राप्ति। कैसे कि जब भगवान मिलेंगे तो अंतिम तो वो एक ही क्षण होगी, जिस क्षण में भगवान मिलते हैं उसी प्रकार की पूर्व की जितनी क्षण बीतती है वो उसी प्रकार के मूल्यवान माने उसी प्रकार के मूल्य की है। कोई भी ऐसी क्षण नहीं है कि जिसमें ये प्रतिबंध होगा कि अमुक क्षण में हम नहीं मिलेंगे या अमुक दिन में नहीं मिलेंगे, अमुक तिथि में नहीं मिलेंगे, अमुक बार में नहीं मिलेंगे, ऐसी कोई शर्त नहीं है। भगवान सब दिन मिल सकते हैं, सब समय के मां मिल सकते हैं, इसलिए हमारी एक एक क्षण का मूल्य समझो कि भगवान की प्राप्ति के बराबर है। ऐसा समझ करके अपने समय की एक क्षण भी ऐसा फालतू बितानी है वो मूर्खता की बात है। और भगवान के मिलने के लिए ऐसी बात भी नहीं है कि भगवान अमुक स्थान में नहीं मिलेंगे, अमुक स्थान में नहीं मिलेंगे, सभी जगह भगवान मिल सकते हैं। जब सभी जगह मिल सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही सुगमता है, बहुत ही सुगमता है। रुपया तो कोई चीज नहीं है, लाख रुपया खर्च करने पर भी जब हमारे को समय नहीं मिल सकता, मूल्य देन चुकाने पर समय नहीं मिल सकता, तो समय का कोई दाम नहीं, इसलिए समय को अमूल्य कहा गया है। रुपये तो समय के मां मिल सकते हैं किंतु समय रुपयों से नहीं मिल सकता। जो जितने संसार के पदार्थ हैं ये समय पर सभी मिल सकते हैं किंतु किसी भी पदार्थ के खर्च करने के ऊपर उनको समय तो नहीं मिल सकता। और जो समय हमारा बीत गया वो लौट कर वापिस नहीं आ सकता, तो इसलिए अब जो बाकी जो समय है वो तो सोच समझ करके बिताना चाहिए। जो बिता दिया गया वो तो गलती थी, किंतु फिर हम जानबूझ करके गलती क्यों करें। तो हमको हर वक्त सावधान रहना चाहिए और अपने आप को भगवान के समर्पण कर देना चाहिए और अपने समय को भी भगवान के समर्पण कर देना चाहिए। समय को समर्पण करना यह है कि भगवान की स्मृति नित रखनी, एक क्षण भी भगवान को नहीं भूलना, ये समय भगवान के में लगा देना है। माने हर समय ऐसा भगवान को याद रखना, ये समय को भगवान के प्रति अर्पण करना है। और कोई जरूरी से भी जरूरी काम है, प्रथम तो इस काम से जरूरी कोई काम जरूरी है ही नहीं, किंतु तुम अपने ज्ञान से किसी काम को जरूरी समझो। तो गीता का ऋषि मुनियों का वचन मान कर करके ये साथ में समझते रहो कि भगवान की प्राप्ति से बढ़कर कोई काम नहीं, भगवान के मिलने के समान और कोई काम नहीं। पर भगवान का मिलना होता है भगवान के भजन ध्यान से, इसलिए भगवान के भजन ध्यान से बढ़कर और कोई भी काम ऐसा नहीं है। तो दूसरा कोई काम जिसको आप अच्छा समझते हो उस काम को भी गौण समझना चाहिए और इस काम को कायम रख करके असली जो भगवान के निरंतर भजन ध्यान का जो साधन है इसको कायम रख करके हर वक्त भगवान को याद रखना, इस बात को कायम रख करके। पर फिर गौणी वृत्ति से दूसरा काम समझो कि बेपरवाह से आप चाहो तो कर सकते हो। माने एक किसी भी काम के ऊपर आपने संसारी काम किसी भी संसारी काम के ऊपर तत्पर होकर के नहीं करना चाहिए। उसको समझो कि उपेक्षा की बुद्धि से करना चाहिए, उदासीन की वृत्ति से करना चाहिए, पक्षपात रहित होकर के उस काम को करना चाहिए। किंतु अपने लिए जो विशेष काम है उसको कायम रख कर सके, भगवान की प्राप्ति का जो साधन है वो कायम रहना चाहिए। उसके अलावे और सभी चीज नष्ट हुए तो कोई हर्ज की बात नहीं। उनके जन्मों में और इसी जन्म में भी हम लोगों ने अपने समय की कदर नहीं की, तो समय की कदर करनी चाहिए। जो आदमी रुपयों को मूल्य देता है, यानी रुपयों का आदर करता है और रुपयों से मिलने वाली वस्तु का आदर करता है, जो वस्तु के बीच के में भगवान का अनादर करता है। आदर करने योग्य तो एक भगवान ही है, रुपयों का आदर कैसे। एक तरफ तो भगवान के नाम का हम जप कर रहे हैं, भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे को रुपये मिलते हैं, उसको नहीं संभालेंगे तो रुपये नष्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ हमारा लड़का बीमार है, वो मर रहा है। तीसरी तरफ हमारे मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा के वहाँ आपत्ति आ रही है, तो समझ इन सब में आपत्ति आओ तो आओ, तुम्हारे साधन में आपत्ति नहीं आनी चाहिए। ये तो इसी प्रकार से होते जाते रहते हैं, बहुत दफे हुए हैं और मिट गए हैं, अभी एक प्रकार से ये सब मिटने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति के वहाँ क्षणिक एक सुख के लिए हम अपने जीवन को मूर्खों के बाप के अपने क्यों हवन करें, यानी क्यों उसको समय को बर्बाद करें जलाएं। जय सीताराम 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 जय सियावर राम चंद्र की जय, मोर मुक्त बंसी वाले की जय। माता पिता की और बड़ों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। देवता जो है, ब्राह्मण जो है, गुरुजन है, उनका आदर सत्कार करना ये हमारा कर्तव्य है। अपने शरीर निर्वाह के लिए न्यायुक्त जीविका करना, यानी जीविका के लिए कोई प्रयत्न करना, ये अपना कर्तव्य है। बाल बच्चों को पालन करना जो धर्म के प्रकार से होता ही है, और ये अपने गृहस्थी लोग करते हैं, तो ये सब चीज गौण है। किसके आगे? जो परमात्मा का जो भजन ध्यान है उसके आगे, भगवान की शरण होकर और हर वक्त भगवान को जो याद रखना है, ये बात सब में सो प्रधान है। भगवान भी गीता में कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध क्या मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैसे संशयम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन सब काल के बीच के माँ मेरा स्मरण कर, हर वक्त सब काल में। तस्मात् तस्मात्मा इसलिए सब काल के माँ तू मेरा ही स्मरण कर, और युद्ध च और युद्ध भी कर। फिर कहते हैं मन और बुद्धि मुझ में लगाने पर मेरे कोई प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, आश्वासन दिया। तो इसमें दो बात आई, एक तो ये कि सब काल के मन मेरे स्मरण कर, और ये मन बुद्धि मेरे में लगा दे, तो दोनों चीज दानी है। यह बात पढ़कर समझकर सोच करके भी फिर हम अपने समय को बर्बाद करें, भगवान के स्मरण के वहां कमी आने दें, तो यही हमारी मूर्खता है। सब समय में तुम शरीर से कर्म करो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मन और बुद्धि भगवान में लगाए हुए ही करना चाहिए। मन और बुद्धि के द्वारा जो काम किया जाता है वो एक नंबर है, उसी की भगवान के यहाँ कीमत है। और शरीर और इंद्रियों से जो क्रिया की जाती है उसकी कोई भगवान के यहाँ विशेष कीमत नहीं है। तुम शरीर और इंद्रियों से चाहे माला फेरो चाहे पूजा पाठ करो, किंतु तुम्हारा मन यदि भगवान के मन नहीं है, और यदि मन आपका भगवान के बीच के मन है, शरीर और इंद्रियों के द्वारा होने वाली जो क्रिया जग करनो, दान देनो, तप करनो, या और भी एक प्रकार से थी जितनी शास्त्रोक्त क्रिया है, तीर्थ करनो, व्रत करनो, उपवास करनो, ये सारी क्रिया उसके मुकाबले में कुछ भी सुनी है, बहुत कम लाभ होता है। बिना मन की क्रिया का बहुत कम लाभ होता है। और जो मन लगा करके और मन से जो काम किया जाता है उसकी बहुत ऊंची कीमत है। तो जब इस बात का ज्ञान हो गया तो एक क्षण भी हमारे नीचे साधन में क्यों जावे, क्यों हम करें, क्या उनको गर्व, तो संसार के जो विषय भोग के लिए अपना समय बिताए और मुक्त मूर्खता है, और प्रमाद आय से निद्रा के काम में समय बिताए तो उससे भी बढ़कर क्या मूर्खता है। वो तो काम से काम है, न तो तामसी क्रिया करनी चाहिए और न तामसी भाव के मां स्थित होकर के निद्रा आल से परमादादी नहीं करना चाहिए। कर्मों का आल से त्याग करना भी तामसीपण है, और कर्मों का विपरीत करना माने ईश्वर की आज्ञा से विरुद्ध चलना भी तामसीपण है, और दोनों का फल अधोगति है। तो अधोगति से तो मनुष्य को बचना ही चाहिए।
हमारा।